जय माँ। ये वास्तव में एक ऐसा विषय है श्री अरविंद की महासमाधि, जहाँ वाणी चुप हो जाती है, शांत हो जाती है और हृदय भर जाता है। ये 75वीं ये जो इशू ऑल इंडिया मैगजीन का छपा है इस साल, वो इसलिए क्योंकि 2025 श्री अरविंद की महासमाधि का 75वां वर्ष है। और ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण ने जाते जाते मनुष्य के हाथ में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों को रख दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में वो भौतिक अनुपस्थिति में वो इसके माध्यम से आगे की जो यात्रा है करेंगे, जब तक श्री कृष्ण स्वयं लौट कर नहीं आ जाते श्री अरविंद के रूप में। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये अगर हम पढ़ें बहुत सूक्ष्मता से तो वो स्पष्ट है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद ने सावित्री को मनुष्य के हाथ में रख दिया, हम सबके हाथ में। सबसे पहले सावित्री के दो भाग छपे, पहला भाग जो दिसंबर में छपा 1950 और दूसरा भाग जो 1951 जनवरी फरवरी में छपा। तो उसके इसी ओकेजन पर, इसी के उपलक्ष में ये इशू निकाला गया था। आमतौर पर समाधि से हम लोग समझते हैं कि जब देह त्याग कर दिया जाता है और जब देह त्याग करने के बाद किसी भी महापुरुष को, महात्मा को या दिव्य आत्मा, ये सारे शब्द जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उनको एक समाधि स्थल में उनकी देह को रख दिया जाता है, जहाँ लोग एक प्रकार से या तो पूजन के लिए या जहाँ आना जाना आते हैं अपना ग्रैटिट्यूड अर्पण करने के लिए। किंतु ये समाधि कुछ भिन्न है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और इसके विषय में माँ एक बड़ी अद्भुत बात कहती हैं। वो कहती हैं कि जो लोग, इवन जो कैजुअल लोग, बहुत सारे लोग आते हैं आश्रम में, जो अभी तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो गया है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि ये समाधि है, क्या है, किसकी है, पूछते हैं कई बार। और कई लोगों को सच में नहीं पता है कि मैं भी जब पहली बार आया कि ये श्री अरविंद की समाधि, सब लोग बताते हैं, तो आपके मन में कभी जब थोड़ी दिनों बाद पता चलता है तो आप पूछते हैं माता जी की समाधि कहाँ है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि यहीं पर माँ की भी समाधि है और श्री माँ ने अपनी अपने लिए वो जगह भी रखी हुई थी। श्री अरविंद की देह जो समाधिस्थ है उसके ऊपर उन्होंने स्पेस रखी थी जो मिट्टी से भरी हुई थी, कि यदि जब वो शरीर त्यागेंगी तो उनको भी वहीं समाधिस्थ किया जाएगा। तो माँ बताती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है और ये दिखता भी है, जो आए हैं विजिट करने, अब उसमें पर्यटक स्थल है। माँ कहती हैं वे भी लेकिन जब समाधि के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो उनको ये सुप्रामेंटल वाइब्रेशन उनको टच करता है। और माँ उसके एक्शन के बारे में बताती हैं कि वो विस्मित हो जाते हैं, बिविल्डर्ड, ये शब्द माँ ने उपयोग किया है कि वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं। सच में ये बहुत, उसको कोई और शब्द इसको करेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता कि समाधि पर गए कैसा लगा। अब वो बिविल्डरमेंट क्यों होता है, ये बड़ी अद्भुत बात है, जिसमें सीमा बताती हैं कि जब वे समाधि स्थल के चारों तरफ से गुजरते हैं तो वो सुप्रामेंटल वाइब्रेशन उनके सारे रिलीजियस और सेंटिमेंटल जो भाव होते हैं उनको वो ध्वस्त कर देता है और उसकी जगह शुद्ध आध्यात्मिक चेतना का उनको अनुभव होता है। और इसलिए माँ कहती है कि दे आर बिविल्डर्ड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप समाधि के चारों तरफ जाएं तो और ध्यान से हम देखें कि कौन से भाव हैं जो हमारे अंदर उमड़ते हैं, तो जब हम ध्यान से देखते हैं अगर अपने आप को तो कौन सा भाव आता है। माँ ने वहां पर एक बड़ा सुंदर लिखा है कि इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड, पर ये उनके लिए जो कुछ जानते हैं श्री अरविंद के बारे में, माता जी के बारे में, ये स्वाभाविक है कि उनके उनका पूरा जीवन वास्तव में मनुष्य पृथ्वी के लिए रहा, तो उनके प्रति अगर ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा तो किसके प्रति आएगा। किंतु एक विचित्र बात यह है कि एक ओर वो समाधि में श्री अरविंद है, लेकिन वहां जाते ही पूरे आश्रम के परिसर में एक ऐसा भाव आता है मानो सब तरफ उनकी एक विशाल विस्तृत उपस्थिति है, और कहीं भी आप आश्रम के किसी भी कोने में बैठ जाएं तो एक ऐसा कि आप वो इमीडिएटली आप उस उपस्थिति के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं. इट इज ए डिवाइन प्रेजेंस. ये जो बात माता माँ बताती हैं कि वो एक ऐसा स्थल है जिसको हम दिव्य उपस्थिति का स्थल कह सकते हैं. और वो एक और अद्भुत बात है, क्योंकि समाधियां और इन सब की हम सबके यहाँ परंपरा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी हम किसी ऐसे स्थल पे जाते हैं तो उसको इन्वोक करने की एक आवश्यकता होती है. कोई प्रीस्ट होता है, कोई ना कोई. आप आम तौर पर कहीं पर भी जाएंगे तो आप एक सैंक्टम सैंक्टोरम है, वो आप नहीं एक्सेस है आपके लिए. आपको वहां जाने में आपके और उनके बीच में कोई ना कोई होगा, किसी ना किसी प्रकार का एक 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 फेंसिंग लगी होगी जिससे कि आप एकदम डायरेक्टली जाके नहीं आसानी से स्पर्श कर सकते हैं. या वो लोग जाएंगे जो किसी ना किसी रूप में एक विशेष कोई मान लो आपको चादर चढ़ानी है या कुछ और करना है, उनको जाने दिया जाएगा. लेकिन एक बड़ी रिमार्केबल चीज़ है कि यहाँ कोई भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, कोई चीज़ नहीं पूछी जाती. मतलब जिन चीज़ों को हम लोग सुनते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से होता है. और उसका कारण यही है कि आमतौर पर दिव्य उपस्थिति को जगाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है. किसी प्रकार की पूजा, यहाँ कोई पूजा नहीं होती है समाधि स्थल पर, किसी प्रकार की कोई रिलीजियस वर्शिप नहीं है. ये भी नहीं है कि जब लोग चले जाते हैं तो रात को कोई शयन पूजा होती हो या सुबह में कोई जागरण होता हो, आरती होती हो. ये आवश्यक होती है वहाँ पर जहाँ पर आपको वो उपस्थिति को इन्वोक करना पड़ता है. लेकिन वो अपने आप जहाँ पर भगवान की उपस्थिति स्वयं ही है. और वो क्यों है? इसलिए नहीं श्री अरविंद वहां पर हैं क्योंकि हम लोगों में से किसी ने उनको इन्वोक किया है. वो इसलिए वहां पर हैं, माताजी बताती हैं, कि जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्होंने इस बात का निर्णय लिया है, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि मैं यहां पर रहूंगा. ये माँ शुरू में ही 7 दिसंबर की उनकी एक बड़ी सुंदर सी एक मैसेज है, कई सीरीज ऑफ मैसेजेस हैं, उसमें वो कहती हैं कि ही हैज प्रॉमिस्ड अस कि ही विल बी देयर टिल ऑल हिज वर्क इज डन. हाँ, लॉर्ड दिस मॉर्निंग दाउ हैस्ट गिवन मी द एश्योरेंस दैट दाउ वुड स्टे विद अस अनटिल दाई वर्क इज अचीव्ड. अब अगर हम लोग इसको केवल बाहर से सुने तो लगता है हाँ नेचुरली बहुत, लेकिन देखिए किसी प्रकार की, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ना हो तो भी ये समाधि स्थल जागृत रहेगा. इसमें किसी के, जब तक भगवान का कार्य नहीं हो जाता, जब तक जिस कार्य के लिए वो नहीं आए हैं, वो उपस्थिति जागृत रहेगी. नॉट ओनली एज ए कॉन्शियसनेस विच गाइड्स एंड इल्यूमाइंस बट ऑल्सो एज ए डायनामिक प्रेजेंस इन एक्शन. तो ये एक दूसरी चीज है कि ये समाधि स्थल, हालांकि एक जगह माँ लिखती हैं कि वहां पर उपस्थिति हमेशा रहती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जाकर के वहां पे उनको इन्वोक करता है उनकी प्रेजेंस को, तो वो सक्रिय हो जाती है उस व्यक्ति के लिए. वरना उनकी जो उपस्थिति है वो सक्रिय है, वो सब समय. ये एक प्रकार से उन्होंने, जैसे शेरविंद कमरे में उन्होंने अपनी एक बनाया हुआ था वो स्थान, उनके केव ऑफ तपस्या, हम ये कह सकते हैं कि समाधि स्थल अब उनकी केव ऑफ तपस्या है. एक साधिका का अनुभव है 20 दिन पूर्व शेरविंद के फिजिकल विड्रॉल के, 20 दिन पूर्व या 24 नवंबर के कुछ पहले की बात है, लगभग 20 दिन पूर्व. और उन्होंने ये देखा कि उस समय तो समाधि नहीं थी, वो जो एरिया था कब से ईयर मार्क, एक तरह से अगर हम देखें उस स्थल पे केवल एक चबूतरा बना हुआ था जहाँ पे कुछ पौधे रहते थे. और वहाँ पर उन्होंने देखा कि श्री अरविंद वहाँ बैठे हुए हैं सर्विस ट्री के को सिराना लगा करके. तो इन्होंने पूछा, अच्छा देखा कि बैठे हुए हैं, और श्री अरविंद उनसे कहते हैं, उन साधिका से, अब से मैं यहां रहूंगा. तो उन्होंने ये बात श्री अरविंद को कही कि ये मैंने देखा, ये क्या है? तो उत्तर में केवल एक स्माइल थी. तो ये केवल समाधि स्थल नहीं है, ये वहां पे वो निवास करते हैं श्री अरविंद, ये उनका निवास स्थान है. और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत सत्य सामने प्रकट आता है कि वे श्री अरविंद जो कक्ष में, जिनको लोग दर्शन लेने के लिए साल में 4 बार जिनकी उपस्थिति, या जो लोग पास में थे, वो जब पूरी तरह अपने आप को उन्होंने विड्रॉ किया हुआ था जिससे कि सुप्रामेंटल चेतना को उतार सके धरती के ऊपर, अब वो यहाँ पर ना केवल सर्वव्यापी हो गए हैं, सर्वव्यापी एक अलग बात है, वो तो पहले ही पूरी विश्व में उनकी चेतना व्याप्त है, किंतु अब उन्होंने उस स्थान पे सबके लिए सहज सुलभ हो गए। ये चीज माता जी बताती हैं, कोई भी वहां जा करके, कोई पंडा पुरोहित नहीं है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आश्रम की अद्भुत हैं, जो कई बार हम इसको नोटिस नहीं करते हैं। कोई भी जा सकता है, कुछ भी अपना हृदय से भाव वहां पर कह सकता है और वो सुनी जाती है। अब ये अगेन जब ये माँ कहती हैं कि वो सुनी जाती है और हम सबका अनुभव है, तो हम इसको ऐसे ना लें जैसे आमतौर पर कि भाई आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नत पूरी होना एक बात है, हम कह सकते हैं वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबकी सुनते हैं, अपने अपने ढंग से सुनते हैं और अपने अपने ढंग से उनकी उत्तर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दिव्य उपस्थिति के सामने आएंगे, मुझे तो बस ये लगता है कि आप क्या मांगेंगे उनसे। और एक ही भाव हृदय के अंदर आता है कि उनके सामने अगर भगवान आपके सामने आ जाएं, तो आप उनसे कुछ मांगेंगे या स्वयं को पूरी तरह देंगे। यू विल गिव योर सेल्फ, पूरा समर्पण करने का एक अद्भुत अवसर है श्री अरविंद की सामने। वो केवल चेतना नहीं है, माँ कह रही केवल एक कॉन्शियसनेस नहीं है विच गाइड्स एंड इल्यूमिन्स, बट ए डायनामिक प्रेजेंस। सो वो डायनामिक प्रेजेंस जो उनकी है वो कार्यरत हो जाती है और अनेकों अनेकों उसकी कहानियां हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। किंतु इस समाधि के अब से एक पूर्व पक्ष है और एक इसका उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष यह है कि श्री अरविंद को इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि माँ ने यह भी बताया है कि ये आवश्यक नहीं था, ये हो सकता था कि एक ये जो 29 फरवरी 1956 में जो घटना हुई है, श्री अरविंद यह स्वयं ही पूरा करके जाते। कई बार इससे लोगों को लगता है कि सीमा भौतिक रूपांतरण की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट है। श्री अरविंद ने स्वयं कहा था कि भौतिक रूपांतरण को इट द लास्ट क्राउन, मे बी फ्यू थाउजेंड ईयर्स और एटलीस्ट ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, क्योंकि भौतिक रूपांतरण केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, भौतिक रूपांतरण के लिए कुछ लोग चाहिए। और हालांकि उनके व्यक्तिगत चेतना में सुप्रामेंटल फोर्स उतरती थी, और इसको माने भी बताया है और इसके कई लोगों के अनुभव हैं, 1918 में ये भी पुरानी जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि श्री अरविंद की देह कैसे चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है, तो उनसे पूछते हैं कि आपकी देह आपको ये क्या हो गया है, जैसे वो बहुत युवा लगने लगे थे, बालों में जैसे उन्होंने तेल लगाया हुआ है। और श्री अरविंद ने उत्तर नहीं दिया, वो केवल ये कहने लगे कि एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। उनकी देह से लोटस फ्रैग्रेंस निकलती थी, इवन जब उन्होंने शरीर का त्याग किया है और उसके बाद जिन लोगों ने उनकी देह को समाधिस्थ किया, उनके उंगलियों में, एक को तो मैं स्वयं जानता हूँ जिन्होंने अब शरीर पूरा कर लिया, उनके उंगलियों में वो लोटस फ्रैग्रेंस श्री अरविंद की देह से जो निकलती थी, रेडिएट करती थी, केवल चूंकि उन्होंने उस शरीर को समाधिस्थ किया, उसमें उन्होंने उठाया था, तो उनकी उंगलियों से जो टच किया उन्होंने, जो थोड़ा जल निकलता है शरीर के अंदर से, यूज टू एक्सपीरियंस दैट लोटस फ्रैग्रेंस, उनकी उंगलियों के अंदर से वो लोटस फ्रैग्रेंस आती थी। तो ये तो एक बात थी जो श्री अरविंद काफ़ी आगे 1926 में ही उनके सामने ये प्रश्न आया था कि मैं अब इसको अकेले हम दोनों रियलाइज कर लें या मनुष्यता को साथ लेके चलें। तो जब माँ कहती हैं कि रिनाउंस द रियलाइजेशन, यहाँ इसकी बात है कि ही रिनाउंस द रियलाइजेशन इन हिज ओन बॉडी सो दैट ही कैन हेसन द कलेक्टिव रियलाइजेशन अपॉन अर्थ। तो ये 1926 की ही घटना है जब श्री अरविंद ने अपने निज के रियलाइजेशन की को त्यागा ताकि वे सबको साथ लेके चल सके। और यहाँ पर कारण क्या था, कारण ये था कि अगर वो चले जाते उस तरह से, बिल्कुल जिस गति से जा रहे थे, तो उनके और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता, यानी वो एक कहते हैं ना अजूबा, एक दिव्य अजूबा बन करके, अभी भी ऐसा प्रतीत होता है जब उनके जीवन को हम पढ़ते हैं और खासकर उनके जो रिकॉर्ड्स ऑफ योग जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को बताया है, तो बिल्कुल अद्भुत लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक गैप हो जाता। और दूसरा ये कि इस यात्रा में बहुत सारी हेल्प, अनेकों प्रकार की सहायता जो लोग श्री अरविंद से प्राप्त करते थे, देह में होने के कारण अनेकों अनेकों पत्र हैं, अनेकों अनेकों प्रार्थना है, वो सारी कठिन हो जाती। तो उन्होंने अपने आप को सहज सुलभ रूप से सबके लिए अवेलेबल रखा। लोग अक्सर ये ये बात नहीं समझ पाते हैं और कई लोग उनको इमिटेट करने की चेष्टा करते हैं कि श्री अरविंद तो संसार से मानो अलग हो गए थे. नहीं, अनेकों अनेकों पत्र अगर हम उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को देखें तो एक बार तो एक सेमी ह्यूमरस वे में कहते हैं, जब किसी ने उनसे कहा कि अवतरण के बारे में, तो वो कहते हैं कि अगर तुम केवल ये देखो कि मैं रात से सुबह तक अपनी नाक को तुम्हारे पत्रों में लगाए रखता हूं तो तुम्हें पता चलेगा कि कम से कम इतने ही काफी है इसके लिए कि कोई दिव्य चेतना है जो कार्यरत है. क्योंकि ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, सूक्ष्म रूप से ही नहीं बल्कि बाहरी रूप से भी. हाँ, भौतिक रूप से उनसे कुछ ही लोग मिल पाते थे, जो लोग उनके पर्सनल अटेंडेंस में थे या जो लोग कमरे में जाते थे उनकी सेवा करने के लिए. उसकी बड़ी अद्भुत कहानियां हैं, जैसे दो कहानियां हैं. जब श्री अरविंद कमरे में रहते थे, द्युमन भाई सफाई करने जाते थे. तो ये सिर्फ इसलिए कि श्री अरविंद की चेतना शरीर के ऊपर किस हद तक चली गई थी, किस मतलब लिमिटलेस के बियॉन्ड चली गई थी. तो वो माताजी ने उनको केवल एक इंस्ट्रक्शन दिया था, कहा था ऊपर उठ के तुम श्री अरविंद को नहीं देखना. अब वो कहते हैं मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि मैं एक कुछ ग्लैंस उनको देख लूं. लेकिन वो पूरा 5 वर्षों तक उन्होंने ये कार्य किया, एक बार भी उन्होंने ग्लैंस नहीं की. क्यों? क्योंकि वो जो तेज उनके अंदर इकट्ठा हो रहा था उसको संवरण करना, जब भी वो मानव चेतना के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसको संवरण करना होता था, प्राय संवरण करके रखते थे. लेकिन दर्शन दिवस के दिन एक और कहानी है, जहाँ पर माता जी, जब पूजा लाल जी साफ करने जाते हैं कमरा, तो माता जी खड़ी हुई हैं द्वार पे, कहती हैं अंदर में एक छोटी सी चिड़िया स्पैरो दरवाजे के ऊपर है, तुम ये देखना कि उनको डिस्टर्ब, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो. अब वो उस कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, पर एक धारणा थी लोगों के लिए कि श्री अरविंद ये कहानियों के कारण भी कुछ, और चूंकि वो फिजिकली नहीं देख पाते थे तो उनको ये लगता था, हालांकि ये काम माँ ने संभाला हुआ था, माँ सब समय वही चेतना सबके लिए सहज सुलभ उपलब्ध थी, किंतु इस कारण लोगों के मन में ये था कि श्री अरविंद को आसानी से हम नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, आसानी से हम उनके नज़दीक नहीं जा सकते हैं. अब समाधि स्थल में बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया, और ये बात माँ बताती हैं. कहती हैं कि कोई भी कहीं से भी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल एक चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं कि अपना सेलफोन ऑफ कर दो. उस पर भी कई बार लोगों को समस्या होती है. और आप वहाँ पर जाइए, कोई आपके और भगवान के बीच में कोई पंडा नहीं है, पुरोहित नहीं है. ये नहीं कि अगर आपने इतनी दक्षिणा दी है तो आपको विशेष दर्शन मिलेगा, या आपकी प्रार्थना विशेष रूप से सुनी जाएगी, या आपको पूजा पाठ का सामान लेके जाना है, या आपको ये पुष्प अर्पित करने हैं, या आप वहाँ से कुछ लेके जा रहे हो, आप उस दिव्य उपस्थिति के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो. तो ये समाधि स्थल एक बहुत बहुत विशेष है, कई कई मायनों में बहुत विशेष है. और ब्यूटी ये है इसकी कि 75 वर्ष हो गए हैं और इतने लोग जाते हैं, किसी प्रकार का वैसे कंट्रोल नहीं है, मतलब कि आप एक सैंक्टम के करीब नहीं जा सकते. लेकिन उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो स्पंदन है, हम सब तो कई लोग यहाँ 30, 35, 40 वर्षों से जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं दिखता है. इसके बारे में भी माँ एक रहस्य बताती हैं कि रात को केवल 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, या एक्चुअली 2 बजे तक, क्योंकि लोग आना शुरू हो जाते हैं आजकल 10 बजे से 2-2.5 बजे तक, शायद 3 बजे लोग आते हैं 2 बजे उठ के, ये बंद रहता है आश्रम का परिसर. और माँ बताती हैं उस समय बहुत सारे देवतागण आते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा जो विकीर्ण किया गया है, बहुत कुछ हम लोग अपनी डिज़ायर्स, ना जाने किस किस मनोदशा को, कौन कौन से स्पंदन यहाँ विकीर्ण करते हैं, और उसको वो क्लीन करते हैं. तो पहले वो क्लीनिंग होती है. तो ये एक ऐसा स्थल है जहाँ मनुष्य नहीं, देवता आकर के, देवता गणा के उसको साफ करते हैं, फिर मनुष्य आते हैं जो उसको जो भी श्रद्धा भाव से सब कुछ करके, उसके बाद हम लोग 5 बजे द्वार खुलता है और प्रणाम करने के लिए सब लोग आते हैं. और ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है मेरे लिए, तो एक नित्य अनुभव है कि ट्रक लोड्स, मेरा अपना अनुभव है, मुझे मालूम नहीं बाकियों का, कि ट्रक लोड्स लोग आते हैं, भीड़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका जब अवसर आता है और आप वहाँ प्रणाम करते हैं तो कोई भी और चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है. अनलेस आप लोगों को देख रहे हो तो वो एक अलग बात है, वो तो एक दूसरी बात है। तो अब ये पहला पार्ट था इसका कि उन्होंने जो दिव्य त्याग दिया। अब जहां तक बात होती है दिव्य उत्सर्ग, तो ये क्या है? तो वहां पर माँ बताती हैं कि कुछ वर्ष पूर्व 1950 के श्री अरविंद ये देख रहे थे कि क्योंकि उन्होंने अब स्वयं को बांध दिया है सबके साथ, सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी अवस्था जहां एक व्यक्ति जो लीडर है वो आगे चल रहा है और उसने स्वयं को बांधा हुआ है एक पूरी मनुष्यता के साथ जो उसको पीछे खींच रही है। अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं बांध के लेके जाऊंगा, और जैसे ही वो प्रेशर लगा रहा है सबको शीघ्र चलने के लिए, तो लोग थकान महसूस कर रहे हैं, उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, वो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं। कुछ ऐसी अवस्था उस समय के आश्रम की जो मनोदशा लोगों की हो रही थी कि जब श्री अरविंद थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते थे, और ये सारे पत्रों में है, तो वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से वो चीख पुकार प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है तो रूपांतरण का प्रेशर होता है, तो आपके ही अंदर जो आपकी कठिनाइयां हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो वो फिर धीरे, वो खुद अपनी गति को धीरे धीरे करके, और इसको बहुत विस्तार से माने समझाया है कि ये जो चीज हो रही थी, और जब वो प्रेशर नहीं लगाते थे तो लोग अपने लेसेज अफेयर में चले जाते थे। उसका जो एक अल्टीमेट एक उदाहरण है जहां निरोद्धा स्वयं लिखते हैं कि एक दिन मुझे 4 बजे श्री अरविंद ने सावित्री लिखने के लिए समय निर्धारित किया था कि जब वो डिक्टेट करेंगे, डिक्टेट क्या प्रेरणा आएगी और वो लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो, उनके मन में विचार आया कि मुझे तो 4 बजे टेनिस खेलने जाना है, और बाद में वो कहते हैं कि मुझे खुद ही प्रतीत हुआ कि भगवान का काम अगर करना है तो पूरी तरह व्यक्ति को डिटैच होना चाहिए सभी चीज़ों से। लेकिन अब आप सोचें, कल्पना करें कि किस तरह से वो ऐसे लीडर जो सबको बांध के ले जाना चाह रहे हैं, और यदि वो जोर लगाते हैं या अगर वो काट देते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जोर लगा रहे हैं तो लोग नहीं पेस को फॉलो कर पा रहे हैं, और अगर वो धीमे हो जाते हैं तो बाकी सब लोग कहते हैं अब हमें किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अब हम जिस स्थिति में वहीं पर हमको रहने दो। ये जो कारण था जिसके कारण अब श्री अरविंद ये नहीं करते हैं कि मनुष्य को दोष देते हैं, माँ कहती हैं उन्होंने देखना चाहा। इस तरह की कहानी आपको गुरु नानक की कहानी में भी मिलेगी, लेकिन उस कहानी में वो अपना शरीर त्याग देते हैं। जो कहानी है उनकी, फाइनल जो स्टोरी है कि उन्होंने अपना जो शरीर को त्यागा, अंत में ही सॉ द स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, और फिर उन्होंने अपने जो नेक्स्ट व्यक्ति था उसको सौंप करके वो चले गए। लेकिन श्री अरविंद ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट का कंसेप्ट नहीं है, ये तो जो भी काम है उनको और माँ को करना है। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने और माँ ने मिलकर एक निर्णय लिया, बल्कि श्री अरविंद ने ये निर्णय लिया कि मैं मनुष्य के इस अंधकार में जहाँ जो उसको बांधे हुए है उसमें उतरूंगा। और इसको उन्होंने कई अपनी कविताओं में भी लिखा, एक है पिलग्रिम ऑफ द नाइट जिसमें वो लिखते हैं कि I made an assignation with the night. In the abyss was fixed our rendezvous. Carrying in my heart God's deathless light, I came her dark and dangerous heart to woo. तो उनके और माँ के बीच में, माँ बताती हैं, 1-2 वर्ष पूर्व ये वार्तालाप हुआ और श्री अरविंद ने ये निर्णय लिया कि I will withdraw. मैं पीछे जाकर के मनुष्य के अंदर जो हो रहा है उसमें उतर के और विश्व चेतना में जो चीज़ें हो रही हैं जो उसको बांधे हुए है उस पर कार्य करूँगा और तुमको ये काम पूरा करना है। यानी ये देखिए, 2 अवतार होने का जो परफेक्ट एग्जाम्पल कि नाउ दैट आई एम विदड्रॉइंग यू हैव टू फुलफिल दी वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर वो कहते भी हैं कि इन एनी केस योर बॉडी इज मच मोर सूटेड, क्योंकि माँ ये कहती हैं बिल्कुल नहीं, इसमें एक बड़ी, माँ जब ये मना करती हैं तो श्री अरविंद कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू, और माँ मानती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें एक ये भी है कि माता जी की लाइफ लाइन फिजिकली बहुत कम थी और श्री अरविंद की लाइफ लाइन बहुत लंबी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो अल्टीमेट जो दिव्य उत्सर्ग है कि नहीं आई विल ऑफर दिस बॉडी फॉर दी वर्क, एंड एक तो वो पीछे जाते हैं उसमें काम करते हैं, अंधकार में उतरते हैं। अब उनका अंधकार में उतरने का अर्थ क्या हुआ, उनके अंदर अतिमानसिक चेतना उतर रही थी इसका अनुभव होता था, अब उस चेतना के साथ वो जब महाअंधकार में जाते हैं तो अब वहां पर वो चेतना उनके साथ साथ जाती है। इसका वर्णन हम सावित्री में देखते हैं, सावित्री में दोनों ही चीज़ों में, जब डिसेंट इनटू नाइट है अशुपति का वर्णन उसमें भी है, और जब सावित्री जब जर्नी थ्रू द डार्कनेस, उसमें भी आता है इसका वर्णन। जब वो उतरते हैं तो वो चेतना जब नीचे बिल्कुल जाती है तो वो शरीर के सभी केंद्रों से होती हुई, यानी शरीर के अंदर वो फिक्स हो जाती है और शरीर उसको नहीं ले पाता है। ये तो बात जो माने, जो श्री अरविंद ने माता जी को बताई कि योर बॉडी इज मोर सुटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन पर्पसेस, तो उनका शरीर इस प्रोसेस में हम क्या कहें, शब्द नहीं है। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि दिव्य उत्सर्ग, कि उनके शरीर ने उस चेतना के भार को, जिसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं सुप्रामेंटल फोर्स इज हार्डर देन द डायमंड एंड सॉफ्टर, एक साथ ही उसमें ये दोनों चीजें हैं, उसमें अद्भुत प्लास्टिसिटी है, जैसे कॉटन होती है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर उतनी हार्डनेस है क्योंकि वो एक प्रेशर है। माँ इसकी बात बाद में बताती हैं कैसे उनके सिर में जब सुप्रामेंटल फोर्स उतरती है और प्रारंभ करती है कार्य करना भौतिक, अब यहाँ पर ब्रेन की बात हो रही है, शरीर की चेतना की नहीं, वो माता जी श्री अरविंद पहले अनुभव कर चुके थे, तो ब्रेन को ऐसा लगता है जैसे वो शैटर हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो उसको बेयर नहीं कर पा रही हैं, और फिर माँ उसको आगे ले जाती हैं, वो कभी और का विषय है। लेकिन श्री अरविंद के शरीर में जब सुप्रामेंटल फोर्स उतरती है, क्योंकि उसी के द्वार से वो जाते हैं, ही प्लंज थ्रू द बॉडीज एल इज ब्लाइंड, इसको हम गॉड्स लेबर में पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन सा मार्ग लिया, शरीर के ही थ्रू उन्होंने उसके अंदर, शरीर की जो कोशिकाएं निकली हैं, अब इसको एक सेकंड के लिए कल्पना करें, अल्टीमेटली भगवान ही ओरिजिन है लेकिन वो निश्चेतना में जाके सोए हुए हैं, तो के पास जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन वो शरीर की एक एक कोशिका के द्वार से वो सपोर्ट, जो जड़ें हैं उसकी निश्चेतना में वहां जा रहे हैं, और इस प्रोसेस में उनका शरीर वास्तव में दिव्य उत्सर्ग भी हम कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि वो एक दिव्य यज्ञ है जहां उन्होंने अपने शरीर को ही पूरी तरह गिफ्ट कर दिया मानव के कल्याण के लिए। तो वो अब शरीर क्या बन गया उनका, वो दिव्य हवन कुंड बन गया, और इसी के बारे में निरोधा समाधि के बारे में कहते हैं कि इट इज़ ए यज्ञ वेदी, उनका ये अपना विजन है, क्योंकि उनका तो वो तो रात को भी सुबह सुबह उनको तो कार्यभार दिया गया था बाद में समाधि की देखभाल का, और उनका कमरा वहीं है, तो वो बताते हैं कि आई सी फ्लेम्स लीपिंग फ्रॉम देयर, चंपक लाल जी के भी ये बड़े अद्भुत विजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आज मॉडर्न यज्ञ वेदी है, एक बार इसमें आज के युग के लिए जहाँ सुप्रामेंटल यज्ञ हो रहा है। इस विषय मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी याद आई जो बड़ी मुझे विचित्र लगी, जब मैंने स्टोरी नहीं है मतलब मेरी अपनी एक घटना, किसी की कोई मेरे पास आए और उन्होंने सुना हुआ था मेरी एक कोई टॉक है कि यहाँ पर अगस्त ऋषि की भी यज्ञ वेदी है, जो चौकोर हिस्सा है समाधि का उसके बारे में, और ये माता जी ने बताया और ये बात नलिनी दा ने कही हुई है, कई लोग कहते हैं कि कहाँ इसका प्रामाणिक रूप है, तो ये नलिनी दा के कन्वर्सेशन में है कि इसके अब आप इसका प्रामाणिक रूप कोई वेद शास्त्रों में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आकर मुझसे बड़ी अजीब सी एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे बताएंगे चल के मेरे साथ कि वहाँ पर अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी कौन सा हिस्सा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी है उसमें हमें इंटरेस्ट है, जो अच्छी बात है, खैर वो है, लेकिन यहाँ श्री अरविंद की यज्ञ वेदी है, और ऐसी यज्ञ वेदी है जहाँ उन्होंने कोई समिधा अर्पित नहीं करी है, उन्होंने अपने देह को ही उसमें पूर्णाहुति दे दी है, उनकी देह ही वहां पे पड़ी हुई है जिसमें से यज्ञ की लपटें निकल रही हैं। पर यह मनुष्य की है कि हम फिर भी घूम फिर करके ही पास्ट को रिपीट करने की चेष्टा करते हैं। खैर मैं ले गया उनको बताया कि ये अगस्त ऋषि की यज्ञ वेदी है, और ये जो है ये श्री अरविंद और माता जी की यज्ञ वेदी है जहाँ से नित निरंतर प्योरीफाइंग फ्लेम्स उठती हैं। वैसे भी हालांकि समाधि तो बाद में हुई, लेकिन श्री अरविंद का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है। कई लोगों को ये लगता है कि अब श्री अरविंद माता जी तो वहाँ पर आश्रम जाने की या समाधि पे जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि समाधि का पर्पस क्या है। ये रिमेम्बरेंस के लिए नहीं है कि भाई वो यादगार है, हम चले गए, हम अपनी मन्नत कुछ पूरी करके आ गए। माता जी कहती हैं कि समाधि स्थल इज द प्लेस जहाँ पे सुप्रामेंटल फोर्स इज एट इट्स इंटेंसेस्ट। ये चीज यहाँ रहने से पता चलती है क्योंकि हालांकि ये सच है कि सुप्रामेंटल फोर्स सब जगह कार्य कर रही है अब, और जहां भी एक डिवोटी उस चीज को इन्वोक करता है तो वहां पर है, क्योंकि अब वो संसार का एक हिस्सा बन गई है. पर ये भी सच है साथ ही, क्योंकि ये इसका हब है, यहां पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी तीव्र है, क्योंकि यज्ञ की लपटें यहां से निकल रही हैं और जगह जगह जाके उसकी फ्लेम्स और चिंगारियां फैल रही हैं. कई बार जब मैं देखता हूँ सोसाइटी ऑरोविल और एनिकोने को सेंटर्स को, तो मुझे तो यही एक विजन में आता है कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष जो ऊपर है उसको श्री अरविंद ने नीचे आरोपित कर दिया है, और इसकी जड़ें जो हैं स्वयं उनकी देह से निकल करके अब वो जो न्यू क्रिएशन का जो अश्वत्थ वृक्ष है, तो वो वहाँ से निकल करके जो तना है वो आश्रम बन गया, क्योंकि वो जो जड़ें हैं वो समाधि स्थल में हैं. और ये देखा भी है मैंने इसको एक तरह से, और उसकी जो अनेकों अनेकों ब्रांचेज हैं वो हमारी सोसाइटी की और अनेकों अनेकों जगह उसी से पोषित हो रही हैं. और जहाँ जहाँ छोटे छोटे डिवोटी सेंटर, ये अनेकों पेड़ पौधे और अंत में ऑरोविल पूरे विश्व में फैला हुआ, इसकी छाया सब जगह फैली हुई है. लेकिन और यहाँ पर ये बात का उत्तर स्पष्ट होता है, क्या कोई भी पत्ता, क्या कोई भी फूल, क्या कोई भी शाखा अपने वृक्ष से कट करके एग्जिस्ट कर सकती है? तो उत्तर स्पष्ट है, नहीं. इट हैज टू कम बैक. और इसको मैं थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में भी, कई बार लोग पूछते हैं कि ऑरोविल में जो प्रॉब्लम चल रही है, स्पष्ट रूप से आप अपने आप को अगर कट करोगे जड़ों से तो आप कैसे पोषित कर सकते हो? तो यू हैव टू रिकनेक्ट. तो इसलिए शेरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं कि इट इज द प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस. एक ऐसा स्थान है जहां आपको डायरेक्ट टच मिलता है सुप्रामेंटल का, और आप उससे पोषित होकर के जाते हैं. शेरविंद के शब्द हैं कि रिचार्ज करके, अब हम लोगों ने उसमें बैटरी को रिचार्ज करना छोड़ दिया. और एक दृष्टि से मैं ये भी कहूँगा, बहुत से लोग हैं जो शेरविंद को पढ़ते हैं, मिला हूँ मैं ऐसे लोगों से जो समाधि नहीं आए, केवल सावित्री पढ़ते हैं और अच्छी उनकी यात्रा चलती है अपने ढंग से. लेकिन इनिशिएशन का अगर पक्का, ये भी लोग पूछते हैं कि इनिशिएशन इस योग में क्या है, तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी अभिप्सा है इनिशिएट होने की तो जाकर के थोड़ी देर समाधि स्थल पर बैठ जाओ और तुम्हारा इनिशिएशन हो जाएगा. एक अपनी आश्रम में वहाँ से उत्तर प्रदेश ही आई थी मधुदी, तो बताती हैं जब वो पहली बार आई तो महेश्वरी जी ने कहानी सुनाई थी, उन्होंने भी ये बताई कि वो जब आई तो उन्होंने जो सिर रखा, मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई यहाँ करना क्या है, कोई बताने वाला उनको नहीं है, आप खड़े हैं, आप धूप बत्ती दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से उन्होंने सिर रखा तो आधे घंटे तक उनको उठाने की, मानो कहीं और, ऐसी ऐसे अनुभव होते हैं कि चेतनी आपकी कहाँ चली गई, विलुप्त हो गई. और ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो बहुत इंटेंसिटी से वो कार्य करती शक्ति खींच लेती है आपको. ये नहीं कि आपको सिर रखे रहना है, कहने का अर्थ है कि वो सारे परिसर में जो इंटेंस सघन ऊर्जा है शेरविंद और माताजी की चेतना की, तो ये है समाधि स्थल जो आने वाले समय में भी सदा सदा के लिए वो प्रज्वलित ज्योत है, जो अतिमानस ज्योत है, जो जागती है कई जगहों पर, लेकिन ये इसका जो प्रयोजन है वो न्यू नई नव सृष्टि है. इसीलिए समाधि स्थल के पास में किसी प्रकार की आप ओल्ड वर्ल्ड की कोई भी चीज़ें नहीं देखेंगे. प्रारंभ किया था कुछ लोगों ने कोकोनट फोड़ना, साष्टांग प्रणाम अभी भी कुछ लोग करते हैं, प्रारंभ किया था, लेकिन उस चीज़ को माता जी ने स्वयं कहा कि यू डोंट हैव टू डू दैट. वो एक अलग कहानी है, एक रिलीजियस वर्शिप के रूप में. यहाँ पर कोई ये नहीं कि आप चढ़ावा दे रहे हैं स्पेसिफिकली समाधि के लिए, ऑफरिंग बॉक्स से आप अपना शांति से चढ़ाना है चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना है आप मत चढ़ाइए, स्वयं को यहाँ पर चढ़ा दीजिए, ये आवश्यक है. क्योंकि उत्सर्ग जो है वो उत्सर्ग ही मांगता है, भगवान ने स्वयं को पूरी तरह दे दिया है सृष्टि को, तो उत्तर में आप क्या दे सकते हैं. कई बार लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं श्री अरविंद के प्रति, तो मेरे मन में तो एक ही भाव आता है कि भाई उन्होंने पूरी तरह अपने आप को दे दिया मनुष्य को और सृष्टि को, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम भी इन रिटर्न पूरी तरह अपने आप को दे दें. और वास्तव में देखा जाए तो ये तो फायदे ही फायदे का सौदा है, हालांकि मतलब अगेन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ ये सच्चा सौदा है, लेकिन ये सौदा सौदे के रूप में करके आप नहीं कर सकते कि भाई इससे मेरा कोई लाभ होगा. भगवान ने किस लिए दिया है? प्रेमवश दिया है, उसी प्रेम के अनुरूप सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, दे देना चाहिए. इसमें तो हम पवित्र रूपांतरित जो भी शब्द कहें वो सब छोटे हो जाते हैं. अब ये उसका पूर्व पक्ष और समाधि स्थल के बारे में. अब इसका एक उत्तर पक्ष है, तो क्या श्री अरविंद की लीला केवल वहीं पर अब रुक गई है, उसके आगे क्या चल रहा है, अब वहाँ पे माता जी बताती हैं। और वो इस इशू में विशेषकर से वो बातें जो श्री अरविंद के, यानी 5 दिसंबर 1950 के बाद श्री माँ श्री अरविंद की जो के विषय में उन्होंने जो कहा है, उनके जो अनुभव हैं, औरों के भी अनुभव हैं लेकिन ऑल इंडिया मैगजीन में उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो श्री माँ के जो अनुभव हैं उस विषय में, एक तो वो ये कहती हैं कि श्री अरविंद ने अपने आप को श्री अरविंद धाम, दैट्स द ओनली वर्ड आई कैन यूज़, जो सूक्ष्म सटल फिजिकल, कौन सा सटल फिजिकल, जो मेटीरियल वर्ल्ड के बहुत करीब है, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं श्री अरविंद माता जी के जो डिसाइपल्स है, वो वहाँ जाते हैं सीधा। तो वहाँ क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से माने जगह जगह वर्णन किया है, यहाँ पे जो कि पेजेस की सीमा होती है तो इसलिए उसको हम नहीं लिख कर पाए हैं, लेकिन एक बार शायद एक इशू में निकाला था, मुझे याद है। तो उसमें एक प्रकार के माँ बताती विस्तृत कि एक ऐसे से कार्य हो रहे हैं जैसे वहाँ एक लेबोरेटरी है, जहाँ नई सृष्टि की मिट्टी जो सहन कर पाएगी न्यू क्रिएशन को, अनुभव है कि पुरानी जी जब जाते हैं उसमें लौट रहे हैं और वो मिट्टी की सारी कंसिस्टेंसी टेक्सचर ये सब माने बताया है। और वो कहती हैं कि श्री अरविंद मुझे दिखा रहे थे और एक जगह वो साइंटिस्ट की तरह टेस्ट ट्यूब से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और फिर माँ कहती नहीं नहीं बस मुझे, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, और मुझे अपना काम वो करने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि भाई ज्ञानगंज है, हिमालय की गुफाओं में एक शांग्रीला की बात सुनते हैं, लेकिन ये तो उन्होंने संसार में सबके बीच में ये क्रिएट कर दिया है। और चाहिए क्या, माँ कहती जस्ट वन स्टेप एंड यू आर देयर। माता जी के शब्द हैं कि इट इज जस्ट नेक्स्ट डोर, ये नहीं कि इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी यात्रा करनी है। ये सुख जगत में श्री अरविंद धाम है जहां पे वे लोग हैं जिनको जिनका नाम है श्री अरविंद माता जी की लिस्ट में, लेट मी पुट इट लाइक दैट। एक है प्रॉस्पेरिटी की लिस्ट जो आश्रमाइट की लिस्ट है, और एक ऐसी लिस्ट है जिसके बारे में हम नहीं जानते। और माँ बताती हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने देखा जो यहां पर नहीं है, और ये उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ जिनके नाम है वो हैं कि नहीं है सारे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो सूक्ष्म जगत में श्री अरविंद के लोक में, श्री अरविंद के धाम में, इसको हम लोग सूक्ष्म आश्रम भी कह लें लेकिन वो आश्रम इन ए डिफरेंट सेंस है, उसमें वो विद्यमान है। और वहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, जो ये मेरी जो आप दृष्टि कह लें, समझ कह लें, कि वहाँ पर कार्य हो रहा है कि सबकी, हम सबकी चेतना को तैयार किया जा रहा है। जब एक क्रिटिकल नंबर होगा तो अतिमानसिक देह की रचना जो अतिमानसिक रूप से की जाएगी। माता जी ने जब उनसे पूछा कि डू यू वांट टू कम बैक इन द बॉडी, श्री अरविंद कहते नहीं, आई विल कम बैक इन टू द फर्स्ट सुप्रामेंटल बॉडी क्रिएटेड इन द सुप्रामेंटल वे। तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है कि मानव जन्म जो मानव योनि से, मानवीय रूप से, प्रक्रिया से, सेक्सुअल प्रोसेस से जो रिप्रोडक्शन होता है, वो देह डायरेक्ट सुप्रमेंटलाइज नहीं होगी, वो एक पॉइंट तक जाएगी। उसके बाद उसका जो जो पूरा जो इंडिविजुअलाइज्ड हो गए हैं चैत्य सत्ता के चारों तरफ, वो मेटीरियल प्रिजर्व रहेगा। और वो प्रिजर्व होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे माने पुरानी जी के बारे में कहा, उसके साथ होगा। और फिर सुप्रामेंटल वे में, प्रोसेस में, इसकी ये एक अलग विषय है, कभी और बात करेंगे कि कैसे कैसे ये सुप्रामेंटल तत्व से ये शरीर बनाए जा रहे हैं जो धीरे धीरे धरती के अंदर आएंगे। लेकिन जब आएंगे तो उनकी जो ठोसता, यही एक लास्ट पार्ट बचा था जो माँ वर्क कर रही थी, वो उतने दे विल बी सफिशियंटली डेंस कि मानव चेतना उनके संपर्क में आ सके, देख सके, अभी वो नहीं देख सकती है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है, और माँ कहती है वो बहुत ही इंटेंस रूप से काम हो रहा है। जब एक साधक ने उनसे पूछा कि क्या उनका काम कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, कुछ ऐसा कुछ था कि, तो माँ कहती है नो, इट हैज बिकम मच मोर इंटेंस एंड पावरफुल, इट इज लाइक ए गोल्डन इनफ्लक्स प्रेसिंग अपॉन अर्थ। क्योंकि कई चीजें हुई, शरीर से वो बंधे नहीं है मानवीय देह से, तो मानवीय देह में एक प्रकार का काम था जिसका पूरा बीड़ा माता जी ने उठा लिया था। उसके बाद वो पूरी तरह से उनकी चेतना विश्व में कार्य कर रही थी, और साथ में उस पीछे रह करके वो मानव चेतना के ऊपर और भीतर जाकर के कार्य कर रहे थे। तो माँ कहती है कि इट हैज बिकम मच मोर इंटेंस, मच मोर पावरफुल। और वो ये भी कहती है कि कोई भी उनको कांटेक्ट कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो बात की है, जिसको हम कहेंगे कि उत्तर पक्ष श्री अरविंद लीला का, जो चल रहा है और वो चलेगा एक जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता. इसमें बस एक वाक्य इसमें से पढ़ लें, फिर हम लोग उसके विषय के ये जिसकी बात बता हो रही थी, जिसमें माँ बता रही हैं, इट इज दिस दैट द पीपल अब्सॉर्ब. ओके, यहां पे कि आश्रम क्या है, ये समाधि स्थल क्या है. इट इज फॉर्मिडेबल हिस, ये पेज नंबर 16 पर है. हिस प्रेजेंस वाइब्रेट्स, इट इज फॉर्मिडेबल हिस प्रेजेंस वाइब्रेट्स कंक्रीट ऑल अराउंड द समाधि. And his influence penetrates and touches the central being and awakens the consciousness to the spiritual life. Even the agnostics, the unbelievers, people of bad will who come out of curiosity to visit the samadhi, return amazed by mysterious alchemy and find an inner peace, because there he showers his peace and his compassion constantly. It is this that bathes them when they pass before him. It is an unbelievable surcharged activity of his force and his presence. ज्ञान बहन से कई लोग जानते होंगे, अंबाला की ज्ञान बहन. एक बार एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ आए थे और उनसे मिलने के लिए गए थे. तो उन्होंने कहा आप कुछ साधना के बारे में बताइए. तो ज्ञान बहन, उस समय उनको ब्लड कैंसर हो रखा है और वो जानती थी क्या हो रखा है, तो वो कहती हैं साधना के बारे में, मुस्कुराने लगी, कहती है हमें तो इतना मालूम है, हमें कोई समस्या होती है हम समाधि पे चले जाते हैं, हमें कुछ कोई चीज़ अच्छी लगती है हम समाधि के पास चले जाते हैं और सब कुछ हमारा वहीं पर रिसॉल्व हो जाता है. ये और बात है कि बाहर आके हम लोग फिर से वो लबादा उड़ने मनुष्य. तो ये एक नई प्रकार की गंगा है, इसका पूरा हम लोग इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं समझ पाए. जब किंतु क्या होता है बाहर आके, जैसे गंगा में जब नहाते हैं तो कपड़े हम घाट पे उतार देते हैं. श्री रामकृष्ण, किसी ने पूछा था कि वापस आके क्या लोग मुक्त रहते, कहते नहीं वो पाप के कपड़े पहन लेते हैं. लेकिन ये उस समय जब आप वहां पे रहते हैं, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कष्ट हो, कोई भी हो, ये उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, कोई बीच बिचौलिया नहीं है. और फिर माँ बताती है, व्हेन आई लुक एट द समाधि एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, आई एम एस्टोनिश्ड टू फाइंड दिस कॉलम ऑफ डैजलिंग लाइट वाइब्रेटिंग विद एन एनर्जी एंड ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स. इट राइजेज लाइक दिस विद ए स्प्लेंडर एंड ए ब्रिलियंस लाइक एन इफ्यूजन ऑफ लाइट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द समाधि. इट इज द न्यू लाइट मेटीरियलाइजिंग. ये देखिए लास्ट का जो वर्ड है, इट इज द न्यू लाइट जो ढूंढ रही है, देह ढूंढ रही है, ऐसे शरीर जो तैयार हैं जिसमें वो मेटेरियलाइज कर सके. सर्विस्ट्री की तो हम लोगों को मालूम ही है, सोल्स आर वेटिंग कि कोई है जो रेडी है हमें रिसीव करने के लिए. कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके अंदर हम जाएं तो सीमा नहीं रहेगी. और चंपकलाल जी के एक बहुत सुंदर अनुभव है समाधि के, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे यज्ञवेदी के रूप में, और वो बड़े डिटेल अनुभव है, विजन्स ऑफ चंपकलाल में है. जस्ट टू, वो विषय बहुत आगे चला जाएगा लेकिन पढ़ सकते हैं हम लोग उनके जो अपने अनुभव हैं. एट नाइट व्हेन एवरीथिंग इज क्वाइट, देर आर सम एंटिटीज हु क्लीन अप दिस प्लेस ऑफ ऑल दैट द पीपल हैव लेफ्ट बिहाइंड, ऑल द फॉर्मेशंस ऑफ फॉल्सहुड, desires, impatience, supplications, all sorts of complaints, bad wills and maladies, as well as the hostile forces, and make this and ye entities kya karti hain, and make this place peaceful and pleasant. They purify the whole surrounding with so much love so that his presence is felt. Ab aap sochiye manushya kya dekhe jate hain bhagwan ko aur bhagwan in return kya dete hain. It is a sanctified place for meditation and not for gossip. Never to speak. It is this that the people absorb when they pass around the samadhi. Without knowing it, they are bathed by his love and they do not even realize as to why they are mystified when they approach the samadhi. It is amazing. Bahut lamba passage hai, bahut adbhut hai. और जब कहती है तुम्हें चिंता होती है ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होता है होगा, तो माँ कहती हैं कि अज्ञान के कारण मनुष्य देख नहीं पाता कि वहां क्या हो रहा है. बट डू नॉट वरी. वन हु हैज बीन गिवन द चार्ज, वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वर्क्स टू ब्रिंग मैन टुवर्ड्स द फ्रंटियर्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड. ही अपरूट्स द डिफिकल्टीज एंड द ऑब्स्टेकल्स इनसेसेंटली, गाइडिंग मैन टुवर्ड्स ए ल्यूमिनस फ्यूचर बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. तो वो वहां पे विद्यमान है और ये है समाधि का महात्मा और महत्व. तो कितना भी हम कह लें वो सब छोटे पड़ जाते हैं, और कितनी सारे अनुभव हैं लोगों के जो स्मरण स्मृति में आ रहे हैं. बट वी विल स्टॉप द समाधि पार्ट देयर, क्योंकि ये सावित्री का भी 75वां वर्ष है. तो ठीक ये कहानी में उसमें भी शेयर कर चुका हूँ श्रीमद् भागवत की कथा में, कि जब श्री कृष्ण जा रहे हैं और उद्धव उनके पास जाते हैं और बिलखने लगते हैं कि आपके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, किसको अप्रोच करूँगा, आपकी भौतिक उपस्थिति नहीं है तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर. और इस तरह से जब वो बिलखने लगते हैं तो श्री कृष्ण उनको एक ज्ञान देते हैं, वो उद्धव गीता के नाम से, लगभग गीता की ही चीज़ें हैं, थोड़े बहुत उसको अलग ढंग से श्री कृष्ण ने दिया है उद्धव गीता. लेकिन एक बात और कहते हैं जो श्रीमद् भागवत में आती है, और हम उसको भी ऑथेंटिक मान सकते हैं कि वो, हालांकि भागवत की रचना उस समय नहीं हुई है, कहा जाता है ओरिजिनल भागवत श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी, उसके बाद वो सनकादिक ऋषि, उसके बाद वो नारद मुनि इत्यादि इत्यादि, फाइनल वर्जन जो उसका आया वो व्यास ऋषि की वाणी से प्रकट हुआ. तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कहानी है कि श्री कृष्ण करुणा से भर जाते हैं और वो अब वो कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी चेतना को, जो सार है उसका रस है, उसको उन्होंने भागवत में उड़ेल दिया. तो सावित्री के विषय में हम यही कह सकते हैं कि वो पूरी श्री कृष्ण की, श्री अरविंद की लीला का भागवत सार है. उसके अंदर सीमा का जीवन है, श्री अरविंद का जीवन है. श्री अरविंद सीमा का जो जॉइंट योग है, योग है. श्री अरविंद सीमा का जॉइंट दर्शन है. इस पथ पे आने वाली सारी जो उपलब्धियां हैं, सारी संसिद्धियां हैं, इस पथ पे आने वाली सारी कठिनाइयां हैं, इस पथ का प्रारंभ, इस पथ का जो समापन है, जो बून है, जो मिलने वाली है मनुष्य के लिए, सब कुछ है. तो वास्तव में, और साथ ही केवल ये नहीं है, माता जी ने यहाँ तक कहा है, और ये जो लोग भी सावित्री का रसपान करते हैं वो इसको जानते हैं कि इट इज़ ए लिविंग गाइड. और अपने आप में ये एक सत्ता है. ये जब माँ कहती है लिविंग गाइड, तो वो शब्दों की बात नहीं करें, सावित्री इज़ ए पर्सनैलिटी. कई कभी कभी लोगों ने महसूस किया होगा कि आप कभी रेफरेंस में लिखिए, मेरे साथ ये तो बहुत बार होता है और इसकी मुझे कई इंटरेस्टिंग अनुभव हैं. एक्चुअली सावित्री देवी का, जो सावित्री यानी जो बुक में जो प्रकट हुई है, उनका उनका दर्शन करने का. तो जब आप नॉर्मली बुक्स में रेफरेंस लिखते हैं तो आप लिखेंगे श्री अरविंदो लेटर्स ऑन योगा, श्री अरविंदो द लाइफ डिवाइन. इसको अनुभव कीजिएगा कि जब आप सावित्री की पंक्तियां लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है, मेरे लिए तो मुझे हमेशा लगता है कि जस्ट टू राइट सावित्री बुक दिस इज एनफ. क्योंकि वो अपने आप में एक जीवंत सत्ता है. और माँ कहती हैं कि वो कौन है सावित्री, श्री अरविंद सीमा की जॉइंट ऊर्जा से वो क्रिएशन है. यानी आप देखें कि वो एक साथ उनकी ऊर्जा मिल करके इस जगत के कल्याण के लिए उन्होंने उस माध्यम से जो मनुष्य के लिए एक्सेसिबल है, वाणी के माध्यम से, उसमें उन्होंने उसको प्रकट किया है. यानी इट इज़ ए चाइल्ड बीइंग में से ऑफ द न्यू क्रिएशन जो सीमा ने और श्री अरविंद ने. इसीलिए जब ये पंक्तियाँ आती हैं कई जगह सावित्री में कि बिल्ट इन द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न, तो आप उसको सावित्री द बुक के लिए भी आप ला सकते हैं. हालांकि वो न्यू क्रिएशन की बात है, लेकिन इट इज़ द गोल्डन टावर द फ्लेम चाइल्ड, और दोनों की उसमें ऊर्जा समाहित है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री अरविंद और सीमा के दोनों के वे अनुभव हैं जो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि भगवान के अनुभव तो भगवान के अनुभव हैं. और उसके बारे में भी माता जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग इट इज ट्रूली, ये पेज 29 पर है, इट मे बी सेड दैट सावित्री इज अ रेवलेशन, इट इज ए मेडिटेशन, इट इज ए क्वेस्ट ऑफ द इन्फिनिट ऑफ द इटर्नल. कई बार लोग पूछते हैं ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें कैसे करना चाहिए, जैसी भावना वहां से प्रारंभ करें. जितना अधिक हम मन को शांत कर पाएंगे, मन कई बार शब्दों में उलझता है क्योंकि वो शब्द ब्रह्म को तो समझता है लेकिन उसको नहीं जो शब्द ब्रह्म के परे हैं, तो वो उसमें उलझ जाता है कई बार इस शब्द का मीनिंग क्या है। वो एक पार्ट है स्टडीज का। गंगा में नहाएं, ये क्षीर सागर है, क्षीर सागर का भी क्षीर सागर है। एक ऑन ए वेरी पर्सनल नोट आई कैन शेयर दिस लिटिल एक्सपीरियंस कि एक बार मैं देखता हूँ कि नई सृष्टि के कई सारे मतलब एक जाने का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पहले का 1914 के पहले का ये जब प्रारंभ हुई थी ये, अब जिसको हम कहते ना कि बहुत तीव्रता तीव्र गति से, तो वहाँ पे कई विमान है, कुछ एक विमान है उसके लिए लोगों को टिकट लेना है, किसी को अलाउ किया जा रहा है किसी को नहीं अलाउ किया जा रहा है कि नहीं एवरीबडी कैन नॉट गो। अब उसमें से मैं भी पहुँचता हूँ, तो मैं जब पहुंचता हूं तो वहां पे मुझे कहते हैं अरे रे आपके लिए तो वो सावित्री यान वैसे ही रेडी है। तो मैं पूछता हूं कि सावित्री यान में कौन जा रहे? नहीं, कुछ हैं जिनके लिए सावित्री अपने डैडी द यान। तो वो इट इटसेल्फ इज ए यान जो ले जाएगा। ये लिविंग एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि देर इज अ केवल सावित्री ही पर्याप्त है। तो फिर मैं पूछता हूं कि कौन कौन है इस यान में जा रहे? वो एक लंबा है जिसमें ढूंढने भी जाता हूं कि भाई बाकी लोग आ जाओ, चलो अभी इस यान, ये तो वेट कर रहा है। तो देर इज, वो तो है ही है कि न्यू सृष्टि के लिए अलग अलग ढंग से भगवान ले जा रहे हैं सबको, लेकिन ये एक यान है जिसके अंदर हम बैठते हैं। ये एक ऐसी महागंगा है, जैसे समाधि है वैसे ये महागंगा है। समाधि वह महागंगा है जो यहां पर है, जहां पर उतरी है, जिसको हम कहते कह सकते हैं कि ये गोमुख है, और उस गोमुख से जो उतरती हुई जाती है जगह 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 पूरे संसार में सागर में, वो गंगा सावित्री है। तो हम इसको ऐसे देखें कि हिमालय, श्री अरविंद की जो माइटी प्रेजेंस है उनके कक्ष में, और उस हिमालय के अंदर श्री माँ जो उनका दिव्य प्रेम जो कार्यरत आश्रम के सारे परिसर में, और वो फिर वहां से गोमुख के रूप में जो गंगा उतरी है अपने शुद्धतम प्योरेस्ट फॉर्म में, वो समाधि में विराजमान है। और वहां से जो कल 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 करती हुई गंगा पूरे संसार में जा रही है, जो चाहे नहा ले, इतना तो करना पड़ेगा कि वहां पर जाकर के आपको उसमें स्नान करना पड़ेगा, वो सावित्री है। और बहुत आश्चर्य होता है कई बार लोग बरसों नहीं पढ़ते कि कठिन है ये करके, ये मैं बता रहा हूं ये उस स्टाइल फोर्सेस का काम है कि ये कठिन है, अंग्रेजी भाषा इसमें उलझे रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ये सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने उसमें नहाना शुरू किया तो कहते हैं ओ माय गॉड, हम किसी से वंचित थे। तो ये महागंगा है और माँ ये कह रही है इसके बारे में, इफ इट इज रेड विद द दिस एस्पिरेशन फॉर इमोर्टैलिटी, द रीडिंग इटसेल्फ विल सर्व एज ए गाइड टुवर्ड्स इमोर्टैलिटी। टू रीड सावित्री इज इंडीड टू प्रैक्टिस योगा। योग साधना कैसे करें? रीड सावित्री। स्पिरिचुअल कॉन्सेंट्रेशन कैसे करें? अगर आप सावित्री पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक चेतना से में आपका ध्यान लग रहा है। वन कैन फाइंड देयर ऑल दैट इज नीडेड टू रियलाइज द डिवाइन। ईच स्टेप ऑफ द योगा इज नोटेड हियर, इंक्लूडिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल अदर योगास। श्योरली इफ वन फॉलोज सिंसियरली वॉट इज रिवील्ड हियर इन ईच वर्स, वन विल फाइनली रीच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सुप्रामेंटल योगा। ऐसी गंगा है, वो आपको ले जाएगी बहा करके। कैसे ले जाएगी? ये गंगा पे छोड़ दीजिए, आप डूब गए उसके बाद उसका काम है, बाकी गंगा मैया करती है, समुद्र तक ले जाती है। आप कल्पना हम ऐसे करें कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो महासमुद्र है, और सावित्री गंगा हमको ले जाके वहां पे रख देती है। इट इज ट्रूली द इनफॉलेबल गाइड हु नेवर अबैंडन्स यू। कई बार लोग ये भी करते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि सावित्री की पंक्तियां क्या कन्वे कर रही हैं, तो कई बार लोग गाइडेंस के लिए सावित्री रैंडमली खोलते हैं। ठीक है, वो वैसे माँ श्री अरविंद की किसी भी पुस्तक के साथ कर सकते हैं, माँ ने स्वयं इसके बारे में कहा है कि पुस्तकें जागृत होती हैं, लेकिन सावित्री की पंक्तियों के अंदर जो चीज़ें छिपी हैं वो बहुत अद्भुत हैं। इट्स सपोर्ट इज ऑलवेज देयर फॉर हिम हु वॉन्ट्स टू फॉलो द पाथ। Each verse of Savitri is like a revealed mantra which surpasses all that man possesses by way of knowledge. Mantra of transformation hai ye. And I repeat this, the words are expressed and arranged in such a manner that the sonority of the rhythm leads you to the origin of sound, which is Om. Everything is there. एंड इट इज हिज ओन एक्सपीरियंस. तो ये सावित्री है. एक छोटे से अनुभव से मैं बंद कर इस वार्ता को यहीं पर विराम दूंगा. एक बार मेरी एक सर्जरी हुई थी तो एनेस्थीसिया दिया गया था. एनेस्थीसिया के बाद जब वो डॉक्टर बुलाते हैं आपको बाहर निकालते हैं, तो मुझे याद है और मेरे पास में कविता भी थी और एक दो लोग थे, तो मैंने निकलते ही बोला सावित्री सावित्री सावित्री. उसके बाद मैंने बोला ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर. तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा आप में से सावित्री कौन है ये आप में से सावित्री कौन है. फिर ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर, तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं. तो कविता ने कहा ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये पूरे होश में आ गए. इट वॉज सच ए लिविंग एक्सपीरियंस कि उस सीमिंगली आउटवर्ड खैर आई वॉज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, पर वो एक अलग चीज है ऑल टुगेदर कि वो एक गाइड के रूप में शी इज ए लिविंग पर्सनैलिटी एंड शी इज द गंगा ऑफ द न्यू क्रिएशन. तो ये सब कुछ और बहुत कुछ है जो श्री अरविंद के उपहार है हम सबके लिए, जिसके बारे में क्या ही कहा जाए. लेकिन उन सभी उपहारों में सबसे अधिक श्रेष्ठ यदि कोई है तो प्रथम है महासमाधि उपहार ही है वो हम सबके लिए, और उसके बाद अगर कुछ है तो वो है सावित्री. जय मां.
बहुत बहुत आभार डॉक्टर आलोक पांडे जी, आपने बहुत विस्तार से डायनेमिक प्रेजेंस की बातें की, आपने लोटस प्रेगनेंस की बात आपने रखी, अतिमानस ज्योत की बात हम लोग सुन पाए, सूक्ष्म जगत में श्री हरिमंद धाम की भी बात हम लोग सुन पाए, आपने अद्भुत बातें रखी. फिर भी हमें वो विशेष दृष्टि न हो, कुछ हमें ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं जिनको और कोई जिज्ञासा रह गई हो, समय सीमा कम है. आपने गंगा सावित्री की भी चर्चा की, मैं देख रहा हूँ विनोद मारोदिया जी है वो तो सावित्री में सचमुच नहा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है सावित्री का उनके द्वारा. आदरणीय विजय पोदार जी है, मनोज जी हैं, तो समय की सीमा देखते हुए मेरा निवेदन होगा सबों से कि अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्नोत्तर हो, कोई ऐसी बात हो तो अपनी बात को संक्षेप में रखा जा सकता है.
आलोक भैया.
हाँ हाँ कहिए विनोद जी.
मुझे ये बॉडी सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात आपके मुंह से सुनी थी, तो कोई ऐसी पंक्तियां, कोई ऐसा पृष्ठ में, ऐसा सावित्री में कुछ है तो बड़ा मेरा निवेदन है कि
बहुत बहुत जगह है इसका संकेत सावित्री में जहां फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है. लेकिन सावित्री पढ़ने से जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मैं अभी वो पढ़ देता हूं, तो वो आपको मिल जाएगी पेज नंबर 375 पर. एक सेकेंड, पेज 375 पर. अब इसको आप अप्लाई करिए, यहां पर मंत्र की बात हो रही है और उस मंत्र का प्रभाव जो होता है हमारे अलग अलग भाग पे. तो कैंटो है द कॉल टू द क्वेस्ट, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं उसके विस्तार में कि वो कैंटो बैकग्राउंड को एक समय एक क्षण को रहने देते हैं. As when the mantra sings in yoga's ear. Yoga's ear यानी योगनिष्ठ, आप भगवान से युक्त होके उसको रिसीव कर रहे हैं उस मंत्र को, सावित्री को. Its message enters stirring the blind brain and keeps in the dim ignorant cells its sound. The hearer understands a form of words and musing on the index thought it holds, he strives to read it with the laboring mind. हमें शब्द ध्वनि सुनाई देती है, समझने की चेष्टा करते हैं, नहीं समझ आता, laboring mind. फिर क्या होता है कि mind चुप हो जाता है, नहीं समझ आता, तब क्या होता है. ये पहला स्टेप है कि पढ़ते वर्ड्स, फॉर्म ऑफ वर्ड्स. बट फाइंड्स ब्राइट हिंट्स नॉट द एम्बॉडीड ट्रुथ. सत्य तो सदैव शब्द के परे होता है, तो वो सत्य को नहीं पकड़ पाता, वो शब्दों के माध्यम से समझने की चेष्टा कर रहा है और सत्य एस्केप होता है. फिर क्या होता है, देन फॉलिंग साइलेंट इन हिमसेल्फ टू नो ही मीट्स द डीपर लिसनिंग ऑफ हिज सोल. The word repeats itself in rhythmic strains. जैसे बात हो रही थी ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर. अब देखिए, अब बॉडी माइंड सबके रूपांतरण की बात आ रही है. थॉट, विजन, फीलिंग, सेंस, द बॉडीज सेल्फ आर सीज्ड अनअटरेबली एंड ही एंड्योर्स एन एक्सटेसी एंड एन इमॉर्टल चेंज. अब देखिए यहां सारी चीजें आ गई हैं, थॉट, फीलिंग, बॉडी सेल्फ. सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बॉडी सेल्फ, फिजिकल कॉन्शियसनेस के अंदर फीलिंग. ही फील्स ए वाइटनेस एंड बिकम्स ए पावर. ऑल नॉलेज रशेज ऑन हिम लाइक ए सी. ज्ञान के सारे द्वार खुल जाते हैं, शक्ति उसके अंदर समाहित होने लगती है, शक्ति का वो एक हब बन जाता है. ही वॉक्स इन नेकेड हेवेंस ऑफ जॉय एंड काम. तो ये क्या है? ये सालों की मुक्ति है भगवान के साथ, उसी वहां पे चला जाता है जहां स्वयं भगवान है. सीज द गॉड फेस एंड हियर्स ट्रांसेंडेंट स्पीच एन इक्वल ग्रेटनेस इन हर लाइफ वॉज सोन. फिर एक और आता है जहां सेल्स की भी बात है, और वो हम लोग पढ़ के फिर आई विल स्टॉप दिस पार्ट. ये आता है विजन एंड द बून में, जब अशुपति दर्शन करते हैं डिवाइन मदर का, और डिवाइन मदर उनको सारे अपने सीक्रेट प्लान बताती हैं, तो अशुपति के अंदर माँ के उपस्थिति में क्या अनुभव होता है. अब ये देखिए पेज 334 पर है, कई जगहों पर है ये चीजें, लेकिन ये बस हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या होता है. ये अशुपति डिवाइन मदर के सामने है. अब देखिए, a divinizing stream possessed his veins, his body's cells awoke to spirit sense. Cells anubhav karne lagi spirit ko, adhyatmik satya ko. Each nerve became a thread of joy, tissue and flesh partook beatitude, a light. The done, unplumbed subconscious caves. केवल शरीर नहीं, subconscious में भी cleaning शुरू हो जाती है. Thrilled with the prescience of her longed for tread and filled with flickering crests and praying tongues, his very body answered to her power. ये श्री अरविंद का अनुभव हो रहा था जहां पर वो जो जिस renunciation की हम लोग बात कर रहे हैं, और तब वो माता जी के जब सामने पहुंचते हैं, जब उनका शरीर रूपांतरित हो रहा है, तो मां से क्या मांगते हैं? वो जान गई हैं कि ये अब सबके लिए मांग रहे हैं ये चीज. तो डिवाइन मदर कहती हैं, अलोन दाउ स्टैंडेस्ट एट द इटर्नल डोर्स, व्हाट दाउ हैस्ट वन इज दाइन, बट आस्क नो मोर. ओ, अब जब वो त्याग क्या करते हैं, वो कहते हैं नो, ही वांट्स एवरीथिंग फॉर द अर्थ. और तब वो कहती हैं कि ठीक है, तुम रहो, मनुष्य को तैयार करो, अंत में मैं आकर के इस संसार को रूपांतरित करूंगी. तो यहां इस त्याग की ये श्री अरविंद का अनुभव है, जिसमें उनकी बॉडी सेल्स भी वो पूरी, तभी तो माने कहा कि उनकी देह का एक एक अंश इज इमॉर्टल. ये उनका अपना अनुभव, और वो जब बट ही रिनाउंस्ड इट, क्योंकि डिवाइन मदर से उन्होंने ये बून मांगी कि मुझे सबके लिए चाहिए. तो और कई जगहों पर है, लेकिन यहां बहुत पावरफुली है.
प्रणाम.
आदरणीय डॉक्टर अरुण पांडे जी के प्रति पुनः आभार प्रकट करते हुए, सभी उपस्थित साधकों को धन्यवाद देते हुए, समय सीमा को देखते हुए, बहुत संक्षेप में थोड़ा समय और लेते हुए, मेरा सादर आग्रह होगा आदरणीय विजय पोदार जी से कि अपनी कुछ बातें वो सरलता से रखें, हम लोगों को और प्रेरक होगी और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी.
बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी न कोई जिज्ञासा है न कोई प्रश्न है. जहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं वहीं रियलाइजेशन शुरू होता है, मेरा ऐसा विश्वास है और मैं जानता हूँ इस बात को.
आपके आशीर्वचन की अपेक्षा है हम लोगों को.
नहीं, अलोक जी ने कई अनुभव अपने बताए, औरों को भी बताए
जी.
मैं अपना एक छोटा सा अनुभव मैं भी बता दूं
जी.
कई लोग जानते हैं कि मैं हमेशा पांडिचेरी जाता था, साल में चार बार पर जाता ही था उनसे, और सीसाइड गेस्ट हाउस में सात नंबर कमरे में ठहर रहा था, तो वहां दीवार पर श्री अरविंद की और श्री माँ की फोटो लगी हुई काफी बड़ी, तो मैं उठिए बैठा हुआ था, मैं सो के पूछा कोई को और नहीं बोल रहा मैंने तो उठा उठ के बैठा, मैंने श्री अरविंद की तस्वीर को देख के मैंने कहा, एक तरह से श्री अरविंद से कहा, क्या इतने गंभीर क्यों बैठे रहते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं है। तो रिजल्ट ये हुआ कि फोटो में श्री अरविंद ऐसी मिस्टीवस स्माइल दी मेरे को, मुस्कुराए फिंचर, अच्छा तुमको ये सब बनने में विश्वास होता है, ये मेरा पसंद रखती है छोटा मोटा, ऐसे एकदम प्रकाश तुम प्रकाश पुंज की बात करी, जगह जगह कोर्ट भी किया था, मेरे से नहीं रहता भी माँ के कोटेशन भी दिए, एक छोटी सी उर्दू की शायरी ध्यान में आ जाती है, सुंदर है, आप कादिकियों से न घबराइए, लड़कियां मतलब मेरा, आप कादिकियों से न घबराइए, दिल जला दूंगा मैं रोशनी के लिए।
वाह वाह क्या वाह,
मेरे अंतर का जो प्रकाश है मैं उसको फैला दूंगा, आप अंधेरे से मत घबराइए, यही श्री अरविंद अपने को बोल के गए हैं, जितना समझते उतने आनंद दिया है, बहुत धन्यवाद।
आपने शाश्वत उत्सर्ग की बात जो हम लोगों के भाषा में हो सकती थी आपने बड़े सुंदर से लगी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अब मैं मोनिका जी से आग्रह करूंगा,
थोड़ा सा प्लीज, एक तो मैं आलोक भैया का विशेष रूप से बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में जो गूढ़ विषय रखे हैं, और ये सचमुच संसार का शायद एकमात्र ऐसा स्थान है, दिव्य स्थान है, कि जो उन्होंने आज बात बोली और वो कितनी हद तक सत्य है कि हम लोग किसी भी देव स्थान में जाते हैं तो जो मुख्य स्थान होता है, जो मुख्य जो है जहाँ पे हम लोग कहते हैं मूर्ति स्थान होता है या जहाँ चेतना केंद्र होता है, वहां तक सबकी तो छोड़े, जो एक उनकी हाजार की रहती है पुरोहितों की, उनमें से भी बहुत कम लोगों को वहां तक होता है, लेकिन यहाँ माँ की श्री अरविंद की ऐसी कृपा है कि हम सब लोग समाधि तक सीधे पहुंच सकते हैं। और इसी में मुझे स्मरण आता है, संभवतः आप लोग भी सहमत होंगे कि जब हम लोग आश्रम जाते हैं तो वहां की एक जो अद्भुत बात सिंप्लिसिटी जो समझ में आती है कि वहां कोई महामंडलेश्वर, कोई पुरोहित, कोई 1,000-10,000 नहीं है, और आप किसी के आउटर एपीरेंस से ये अंदाज नहीं लगा सकते कि वो अंदर भीतर अपने भीतर कितनी दिव्यता लिए हुए हैं, और बालक जैसी जो कोमलता लिए हुए लोग वहां दिखाई देते हैं, और एकदम सरल भाषा में जैसे ज्ञान बहन जी का भैया ने बताया, तो ये सरलता माँ हम सबको दे, और सावित्री के पाठ का हम लोग जो है ना निरंतर प्रयास करें, और नए साल में हम लोग और माँ के सच्चे बालक बनने की तरफ प्रयास करें, ऐसी मेरे नए साल में हम सबके लिए माँ का आशीष बरसे ऐसी शुभकामनाएं हैं, और अगले साल भी हम लोग इसी तरह आलोक भैया से और हमारे जो विद्वान बनता है उनसे अलग अलग विषयों पर श्री अरविंद की चेतना, माँ की चेतना, उनके प्रकाश में हम आह्वान करते रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं भैया को और आप सबको बहुत धन्यवाद, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय माँ, जय माँ, जय माँ,
आपने बहुत अच्छे से समाप्त